एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है, सभी सुनने वालों का स्वागत है। मैं हूं मेजबान वन
और मैं हूं मेजबान टू। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो शायद आपकी इतिहास के समझ को थोड़ा हिला देगा।
हाँ बिल्कुल, हम सबने स्कूल में पढ़ा है वैज्ञानिक क्रांति के बारे में।
हाँ वही, वो दौर जब अचानक सब कुछ बदल गया है ना,
वही
नए नए आविष्कार हुए और दुनिया एकदम मॉडर्न बन गई। कॉपरनिकस, गैलीलियो, न्यूटन,
वही नाम सुनते ही लगता है कि भाई इन्होंने तो पुरानी सारी सोच को उखाड़ फेंका और एक एक बिल्कुल नई वैज्ञानिक दुनिया बना दी।
पर क्या सच में ऐसा ही हुआ था एकदम अचानक? क्या यह वाकई एक क्रांति थी या कुछ और था?
यही सवाल उठाया है लॉरेंस एम प्रिंसिपे ने। उनकी किताबें हैं जैसे द साइंटिफिक रेवोल्यूशन और एक छोटी वाली भी द साइंटिफिक रेवोल्यूशन अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन।
हाँ, और आज हम उन्हीं के काम के आधार पर इस पूरी कहानी को थोड़ा खंगालने वाले हैं। और यकीन मानिए, ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है।
नहीं बिल्कुल नहीं, ये हमें सिखाता है कि असल में ज्ञान बढ़ता कैसे, कैसे नई चीजें पुरानी चीजों से जुड़ी होती हैं और कैसे हम अक्सर इतिहास को थोड़ा ज्यादा ही सरल बनाकर देख लेते हैं।
सही कहा। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि लॉरेंस प्रिंसिपी हैं कौन और क्यों इनकी बात सुनना जरूरी है ना?
हाँ बिल्कुल, इनकी जो पृष्ठभूमि है वो बड़ी दिलचस्प है।
हाँ, मैंने भी पढ़ा, ये सिर्फ इतिहासकार नहीं है, मतलब सिर्फ पुरानी किताबें पढ़ने वाले नहीं।
नहीं, वो जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में विज्ञान के इतिहास के प्रोफेसर तो हैं ही, साथ में केमिस्ट्री के भी प्रोफेसर हैं।
अरे वाह, ये तो कमाल का कॉम्बिनेशन है। मतलब वो इतिहास के नजरिए से भी चीजों को देखते हैं।
और एक साइंटिस्ट की तरह भी समझते हैं कि लैब में असल में क्या होता है।
बिल्कुल, और उनकी खास दिलचस्पी है कीमियागिरी में, जिसे अंग्रेजी में एल्केमी कहते हैं, और शुरुआती केमिस्ट्री में।
अच्छा,
हाँ, और वो सिर्फ रॉबर्ट बॉयल या आइजैक न्यूटन जैसे लोगों के पुराने दस्तावेज पढ़ते नहीं हैं, बल्कि उनके नुस्खों को अपनी लैब में बाकायदा करके देखते हैं।
सच में ये तो कमाल है।
हाँ, इसे वो खाइमिस्ट्री कहते हैं, मतलब उस दौर की केमिस्ट्री जब आज की तरह कीमियागिरी और असली विज्ञान के बीच इतनी मोटी दीवार नहीं थी।
तो मतलब ये सिर्फ किताबी बातें नहीं कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकल अनुभव से भी बोल रहे हैं।
सही,
ये उन्हें एक अलग ही पकड़ देता है ये समझने के लिए कि उस जमाने के लोग असल में क्या सोच रहे थे, है ना, क्या कर रहे थे जब वो पदार्थ यानी मैटर के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे।
बिल्कुल सही। अब आते हैं उनकी किताब के मुख्य विचार पर। प्रिंसिपे का सबसे बड़ा दावा क्या है, मतलब निचोड़ क्या है?
देखो संक्षेप में कहें तो वो कहते हैं कि ये जो 1500 से 1700 के बीच का दौर है जिसे हम सब वैज्ञानिक क्रांति कहते हैं, वो कोई अचानक कोई घटना नहीं थी।
अच्छा,
मतलब ऐसा नहीं था कि किसी ने बस एक स्विच दबाया और मध्ययुग का अंधेरा खत्म और आधुनिक विज्ञान का उजाला हो गया।
हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए।
ये कोई कोई बॉलीवुड फिल्म का नाटकीय मोड नहीं था। प्रिंसिपे कहते हैं कि ये एक धीमी काफी जटिल प्रक्रिया थी जिसकी जड़ें मध्ययुगीन सोच में थीं, इस्लामिक विद्वानों के काम में थीं और यहाँ तक कि प्राचीन यूनानी ज्ञान में भी फैली हुई थी।
तो वो इस हीरो वाली कहानी को चुनौती देते हैं कि कॉपरनिकस, गैलीलियो, न्यूटन जैसे कुछ महान लोगों ने अकेले ही सब कुछ बदल दिया।
हाँ बिल्कुल, उनका कहना है कि ये लोग असल में अपने समय की सोच और ज्ञान पर बहुत बहुत ज्यादा निर्भर थे।
अच्छा, मतलब पुरानी चीजों को पूरी तरह फेंका नहीं, बल्कि उन पर ही कुछ नया बनाया एक तरह से।
बिल्कुल बिल्कुल, प्रिंसिपे हमें दिखाते हैं कि वैज्ञानिक क्रांति की कहानी जो हम अक्सर सुनते हैं वो असल में बाद में इतिहासकारों ने गढ़ी है।
बाद में घड़ी है।
हाँ मतलब इतिहास को पीछे मुड़कर देखते हुए हमने कुछ घटनाओं को चुन लिया और उन्हें एक सीधी नाटकी कहानी में पिरो दिया जिसमें वो जो निरंतरता है, जो कॉन्टिन्यूटी है वो अक्सर खो जाती है।
तो उनका मकसद ये है कि हम उस दौर को आज के चश्मे से ना देखें, बल्कि उसी के संदर्भ में समझें, ये जानने की कोशिश करें कि उस समय के लोगों के लिए क्या मायने रखता था, वो दुनिया को कैसे देखते थे।
एकदम सही, बदलाव जरूर हुआ और गहरा बदलाव हुआ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो पुराने और नए विचारों का एक मिलाजुला रूप था, एक खिचड़ी जैसा। ऐसा नहीं कि एक चीज पूरी तरह खत्म हो गई और दूसरी शुरू हो गई।
ये तो वाकई सोचने वाली बात है। चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं। प्रिंसिपे अपने इस दावे के समर्थन में क्या तर्क देते हैं? पहला सवाल तो यही कि क्या इसे क्रांति कहना भी सही है?
बढ़िया सवाल, बिल्कुल। प्रिंसिपे बताते हैं कि ये जो शब्द है वैज्ञानिक क्रांति, ये खुद ही 20वीं सदी में गढ़ा गया।
अच्छा, इतना नया है ये शब्द।
हाँ, इतिहासकारों जैसे अलेक्सेंडर क्वेरे और हर्बर्ट बटरफील्ड ने इसे लोकप्रिय बनाया। शायद वो दिखाना चाहते थे कि आधुनिक विज्ञान की शुरुआत कितनी शानदार थी। एक तरह की उत्पत्ति कथा बनाने की कोशिश थी।
मतलब उस जमाने के लोग खुद को क्रांतिकारी नहीं समझ रहे थे कि हम कोई क्रांति ला रहे हैं?
ज्यादातर तो नहीं, कई तो बल्कि ये मानते थे कि वो तो पुराने खोए हुए ज्ञान को फिर से खोज रहे हैं।
अरे उल्टा।
हाँ, जैसे पाइथागोरस या आर्किमिडीज का ज्ञान, उन्हें लगते था कि वो प्राचीन काल की महानता को वापस ला रहे हैं, ना कि कुछ बिल्कुल नया बना रहे हैं। और ये भी याद रखना जरूरी है कि मध्ययुग कोई ज्ञान विज्ञान से खाली अंधकार युग नहीं था, जैसा अक्सर कह दिया जाता है। विश्वविद्यालय पहले से थे, तर्क वितर्क की एक मजबूत परंपरा थी,
और इसमें इस्लामिक दुनिया का योगदान अक्सर हम उसे थोड़ा नजरअंदाज कर देते हैं।
हाँ, और वो बहुत महत्वपूर्ण था। इब्न सीना, इब्न रुश्द, इब्न अल हैथम, इन जैसे विद्वानों ने गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स में जो काम किया, उसने यूनानी ज्ञान को न सिर्फ बचाया बल्कि उसे आगे भी बढ़ाया।
और फिर वही ज्ञान यूरोप पहुंचा।
बिल्कुल, अनुवादों के जरिए यूरोप पहुंचा और वहां की सोच को बदलने में बहुत मदद की। तो ये तथाकथित क्रांति अचानक यूरोप में पैदा नहीं हुई, इसकी जड़ें काफी काफी फैली हुई थी।
ठीक है, तो क्रांति शब्द पर ही सवाल है।
हाँ,
अब उन बड़े नामों पर आते हैं जिन्हें हम क्रांति का चेहरा मानते हैं, जैसे कॉपरनिकस और गैलीलियो। क्या प्रिंसिपे उन्हें भी अलग तरह से देखते हैं?
हाँ बिल्कुल, कॉपरनिकस को ही लीजिए। हम उन्हें क्रांतिकारी क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्होंने कहा कि पृथ्वी नहीं, सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है ना।
हाँ बिल्कुल, सूर्य केंद्रित मॉडल।
पर प्रिंसिपे कहते हैं कि कॉपरनिकस असल में काफी रूढ़िवादी कंजर्वेटिव थे।
रूढ़िवादी कैसे?
उनका मकसद था पुराने टॉलेमी मॉडल की गणितीय गड़बड़ियों को ठीक करना। उसमें कुछ हिसाब किताब में दिक्कतें थीं। वो एक ज्यादा सुंदर, ज्यादा सामंजस्यपूर्ण सिस्टम बनाना चाहते थे। वो टॉलेमी के काम पर बहुत ज्यादा निर्भर थे, उसी के ढांचे में काम कर रहे थे।
मतलब उनका वो सूर्य केंद्रित मॉडल शुरू में एक तरह का गणितीय जुगाड़ माना गया, न कि ब्रह्मांड की असली तस्वीर।
काफी हद तक शुरुआत में कई लोगों ने उसे सिर्फ गणना करने का, हिसाब लगाने का एक बेहतर तरीका माना। उसे फौरन सच नहीं मान लिया गया था।
और गैलीलियो, उनका क्या?
हाँ, गैलीलियो जरूर कॉपरनिकस के बड़े समर्थक थे, और उन्होंने दूरबीन से जो देखा वो कमाल था। बृहस्पति के चांद देख लिए, शुक्र ग्रह के फेजेस देखे, चांद पर पहाड़ देखे, इन सब ने पुरानी अरस्तुवादी सोच को वाकई हिला दिया।
लेकिन गैलीलियो का चर्च के साथ वो मशहूर झगड़ा, उसे तो हमेशा ऐसे दिखाया जाता है जैसे विज्ञान बनाम धर्म की लड़ाई हो।
हाँ, पर प्रिंसिपे कहते हैं कि मामला इतना सीधा नहीं था। ये सिर्फ विज्ञान और धर्म की लड़ाई नहीं थी, इसमें दर्शन यानी फिलोसफी की बातें थीं, बाइबल की व्याख्या कैसे की जाए इस पर बहस थी, किस संस्था के पास सच बोलने का अधिकार है अथॉरिटी का सवाल था, और हाँ, व्यक्तिगत टकराव भी थे।
अच्छा, काफी कुछ मिला जुला था मतलब।
हाँ, इसे सिर्फ दो टीमों का मैच समझ लेना बहुत बहुत बड़ी सरलीकरण,
ओवर सिंप्लीफिकेशन।
ये तो काफी पेचीदा लगता है। अच्छा, अब थोड़ा विषय बदलते हैं। उस दौर में दुनिया को देखने का एक और बड़ा नजरिया बदला था, वो मैकेनिकल फिलॉसफी वाला। ये क्या बोला थी?
हाँ, ये अरस्तु की सोच से बिल्कुल अलग थी। देखो, अरस्तु मानते थे कि चीजों में अंदरूनी गुण और उद्देश्य होते हैं। पत्थर नीचे क्यों गिरता है? क्योंकि उसका स्वभाव है जमीन की तरफ जाना।
हाँ, उसका लक्ष्य है, सही। लेकिन मैकेनिकल फिलॉसफी, जिसे डिकार्ते जैसे लोगों ने आगे बढ़ाया, उसने कहा कि भाई, ब्रह्मांड एक बड़ी मशीन की तरह है। हर चीज छोटे छोटे कणों से बनी है, और सब कुछ इन कणों के आकार, उनकी बनावट, उनकी गति, इसी से तय होता है।
मतलब फोकस क्यों से हटकर कैसे पर आ गया, चीजें क्यों होती हैं, उनका उद्देश्य क्या है,
बिल्कुल,
इसके बजाय वो काम कैसे करती हैं, उनका मैकेनिज्म क्या है।
बिल्कुल, जैसे घड़ी कैसे काम करती है, वैसे ही ब्रह्मांड कैसे काम करता है। लेकिन मजे की बात यह है कि डिकार्ते जैसे ज्यादातर लोग बहुत धार्मिक थे।
अच्छा।
हाँ, वो मानते थे कि ये मशीन भगवान ने बनाई है, वो एक महान घड़ी साज हैं। तो उनके लिए मशीन वाली सोच और भगवान में कोई झगड़ा नहीं था।
और इस मशीन वाली सोच का असर जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी पर भी पड़ा होगा फिर।
हाँ बिल्कुल पड़ा। जैसे एंड्रियास विसालियस, उन्होंने सदियों से चले आ रहे गैलन के शरीर रचना विज्ञान, एनाटॉमी को चुनौती दी। सोचो, गैलन की बातें लगभग 1300 साल से सच मानी जा रही थी।
बापरे, 1300 साल।
हाँ, विसेलियस ने कहा, भाई पुरानी किताबों पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो, खुद मानव शरीर को काटो, छांटो, डिसेक्शन, और देखो कि सच क्या है। ये जो सीधा अवलोकन, ऑब्जर्वेशन पर जोर था ना, ये बहुत बड़ी बात थी।
और विलियम हार्वे, जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन खोजा,
वो भी मैकेनिकल सोच का एक बेहतरीन उदाहरण है। हार्वे ने दिल को एक पंप की तरह माना, फिर उन्होंने हिसाब लगाया कि दिल एक घंटे में कितना खून पंप करता है, और वो मात्रा इतनी ज्यादा निकली
कि शरीर उतना नया खून बना ही नहीं सकता।
बिल्कुल, तो उन्होंने तर्क दिया कि इसका मतलब है कि खून को शरीर में घूमना ही पड़ता है, यानी सर्कुलेशन। ये मात्रात्मक क्वांटिटेटिव सोच और यांत्रिक तर्क मैकेनिकल रीजनिंग का इस्तेमाल था, एकदम नई बात थी।
अब आते हैं उस चीज पर जिसमें प्रिंसिपे की खास महारत है, केमिस्ट्री, यानी उस दौर की कीमियागरी और केमिस्ट्री। हम तो कीमियागरी को बस सोना बनाने की फालतू कोशिश समझते हैं ना?
हाँ, अक्सर यही समझा जाता है, पर यही प्रिंसिपल हमारी सोच बदलते हैं। वो कहते हैं कि कीमियागिरी सिर्फ सोना बनाना नहीं था। हाँ, वो एक लक्ष्य जरूर था कई लोगों के लिए, पर ये उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज थी।
अच्छा,
क्या मतलब? ये पदार्थ की बनावट को समझने की एक कोशिश थी। असरदार दवाइयां बनाने का एक तरीका था, जैसे पैरासेल्सस का स्कूल था, वो इसी पर जोर देता था। और कुछ लोगों के लिए तो ये आध्यात्मिक शुद्धि का रास्ता भी था।
तो ये एक तरह की प्रयोगात्मक परंपरा थी, एक्सपेरिमेंटल ट्रेडिशन, जिसने बाद में केमिस्ट्री की नींव रखी।
हाँ बिल्कुल, इसने कई प्रयोगशाला तकनीकें विकसित की। पदार्थ के कणों से बने होने का विचार, जिसे कणिका सिद्धांत कहते हैं, उसे भी कीमियागिरी से बल मिला।
और सबसे हैरान करने वाली बात सुनिए।
बताइए।
रॉबर्ट बॉयल, जिन्हें हम आधुनिक केमिस्ट्री का पिता कहते हैं, बॉयल का नियम स्कूल में पढ़ा है ना?
हाँ हाँ बिल्कुल, पीवी इज इक्वल टू के वाला,
वही।
वो रॉबर्ट बॉयल जिंदगी भर कीमियागिरी में लगे रहे।
क्या बात कर रहे हैं,
बॉयल एक कीमियागर थे।
हाँ।
प्रिंसिपे दिखाते हैं कि बॉयल के लिए उनके वो मशहूर गैस वाले प्रयोग और उनकी वो गुप्त कीमियागिरी वाली खोजें दोनों एक ही चीज का हिस्सा थी।
अच्छा,
वो इन्हें अलग अलग नहीं देखते थे। उनके लिए ये सब भगवान की बनाई इस दुनिया जो कणों से बनी है को समझने का तरीका था।
ये तो सच में चौंकाने वाला है। मतलब हमारी केमिस्ट्री की किताबों में ये सब कहाँ लिखा होता है? और न्यूटन के बारे में क्या? वो तो एकदम तर्क और गणित वाले लगते हैं, एकदम अलग।
प्रिंसिपे कहते हैं, न्यूटन को क्रांति का अंत मत समझो, उन्हें संश्लेषण सिंथेसिस का शिखर समझो। उनकी महान किताब प्रिंसिपिया मैथमेटिका वो अचानक आसमान से नहीं टपकी थी।
अच्छा।
हाँ, वो मध्ययुगीन विचारों, पुनर्जागरण के गणित और उस समय के जो प्रयोग हो रहे थे, इन सबको मिला के बनी एक शानदार रचना थी, एक संश्लेषण था वो।
और क्या, न्यूटन भी मतलब कीमियागिरी में शामिल थे? कहीं पढ़ा था मैंने शायद।
अरे शामिल क्या थे, उन्होंने कीमियागिरी और बाइबिल की व्याख्या पर इतना ज्यादा लिखा है शायद जितना फिजिक्स और गणित पर नहीं लिखा होगा।
बाप रे, न्यूटन और कीमियागिरी, बाइबल।
हाँ, और प्रिंसिपे का तर्क है कि ये सब उनके लिए अलग अलग नहीं था, ये कोई उनका साइड हॉबी नहीं था। वो मानते थे कि भगवान ने दो किताबें लिखी हैं, एक प्रकृति की किताब जिसे विज्ञान से पढ़ते हैं, और दूसरी धर्म ग्रंथ की किताब बाइबल। और कीमियागिरी शायद उनके लिए वो तरीका था जिससे वो समझते थे कि भगवान इस मशीन जैसे ब्रह्मांड को चलाता कैसे, उसमें जान कैसे डालता है, वो सक्रिय सिद्धांत एक्टिव प्रिंसिपल क्या है। इन सबको अलग करना हमारी आज की सोच है, न्यूटन की नहीं।
ये तो पूरी छवि ही बदल देता है न्यूटन की। अच्छा, ये तो हो गई विचारों और लोगों की बात। प्रिंसिपे संस्थानों के बारे में भी कुछ कहते हैं, मतलब ये ज्ञान फैलता कैसे था, समाज में कैसे जगह बनाता था।
हाँ, ये बहुत जरूरी पहलू है, और प्रिंसिपे इस पर जोर देते हैं। ज्ञान सिर्फ अकेले जीनियस के दिमाग में पैदा नहीं होता, वो विश्वविद्यालयों में, राजाओं के दरबारों में, और हाँ, धार्मिक संस्थानों में पनपता था और वहीं से फैलता था।
और फिर वो वैज्ञानिक सोसाइटियां बनी है ना, रॉयल सोसाइटी लंदन में और पेरिस में एकेडमी ऑफ साइंसेस, उनका क्या रोल था?
बिल्कुल, लंदन की रॉयल सोसाइटी 1660 और पेरिस की एकेडमी रॉयल डे साइंसेस 1666 जैसी संस्थाएं बहुत बहुत महत्वपूर्ण थी। इन्होंने वैज्ञानिकों को एक मंच दिया।
किस तरह का मंच?
मिलने का, अपने नतीजे शेयर करने का, एक दूसरे के काम पर बहस करने का, आलोचना करने का, रिसर्च को फंड करने का, और हाँ, वैज्ञानिक पत्रिकाएं शुरू करने का, जैसे रॉयल सोसाइटी की फिलोसॉफिकल ट्रांजैक्शंस। वो दुनिया की सबसे पुरानी वैज्ञानिक पत्रिकाओं में से है और आज तक छपती है।
अरे वाह, तो इन संस्थाओं ने एक तरह से नए विचारों को इज्जत और पहचान दिलाई और विज्ञान को एक संगठित सामाजिक रूप दिया।
हाँ बिल्कुल, इन्होंने ही आधुनिक विज्ञान की सामाजिक और संस्थागत नींव रखी। विज्ञान अब सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों का जुनून नहीं रहा, बल्कि एक सामूहिक प्रयास, एक कम्युनिटी एफर्ट बन गया।
तो इस पूरी बातचीत से प्रिंसिपे के काम के मुख्य संदेश क्या निकलते हैं? अगर हमें कुछ खास बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी?
मेरे ख्याल से सबसे पहली और जरूरी बात तो यही है, निरंतरता बनाम क्रांति। जिसे हम क्रांति कहते हैं वो असल में एक क्रमिक विकास था, एवोल्यूशन था, रेवोल्यूशन नहीं कह सकते।
हाँ, जो अतीत पर बना था उसे मिटाकर नहीं।
बिल्कुल, जैसे आज भी देखें, बड़े बदलाव अक्सर पुरानी चीजों पर ही टिके होते हैं, रातों रात सब कुछ नहीं बदलता।
सही। और दूसरा?
दूसरा, धर्म और विज्ञान का जुड़ाव। उस दौर में ये दो अलग अलग डिब्बे नहीं थे। प्रकृति को समझना वो भगवान की कारीगरी को समझना था।
हाँ, आज हम हर चीज को अलग करके देखते हैं, पर उस दौर की सच्चाई समझने के लिए ये जुड़ाव देखना जरूरी है।
तीसरा, ज्ञान एक सामाजिक चीज है। साइंस इज सोशल। विज्ञान सिर्फ अकेले जीनियस नहीं बनाते, ये समाज में संस्थाओं के जरिए आपसी सहयोग और बहस से आगे बढ़ता है।
जैसे आज भी हम बात करते हैं ना कि भारत में एक अच्छा रिसर्च का माहौल, एक इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है, वो इसीलिए जरूरी है।
बिल्कुल। और चौथा, प्रेजेंटिज्म से बचना, मतलब अतीत को आज के नजरिए से, आज के मूल्यों से मत देखो।
हाँ, ये प्रिंसिपल बार बार कहते हैं कि हमें उस दौर के लोगों को उनके अपने संदर्भ में समझना चाहिए। हम आज के ज्ञान के आधार पर उन्हें सही या गलत ठहराने वाले कौन होते हैं, है ना?
और ये सोच हमें आज भी दूसरों को समझने में मदद करती है जिनके विचार हमसे अलग हैं।
और एक और बात शायद जोड़ सकते हैं, ज्ञान पाने के कई तरीके थे, कोई एक वैज्ञानिक विधि या साइंटिफिक मेथड अचानक से नहीं आ गया था।
हाँ, ये भी जरूरी है। गणित का इस्तेमाल हो रहा था, प्रयोग हो रहे थे, पुरानी किताबें पढ़ी जा रही थी, दार्शनिक तर्क दिए जा रहे थे, सब कुछ चल रहा था।
प्रिंसिपे के काम में कुछ ऐसी बातें हैं जो दिमाग में अटक जाते हैं, कुछ यादगार विचार या कथन जिन्हें हम कोट्स कह सकते हैं।
हाँ, कई हैं। पहला तो मेरे दिमाग में वही आता है, वैज्ञानिक क्रांति हुई नहीं, ये कहानियां जो हम सुनाते हैं।
गहरा है यह तो।
इसका मतलब ये नहीं कि कुछ बदला ही नहीं।
नहीं, मतलब ये कि वो क्रांति वाली जो नाटकीय कहानी है वो हमने बाद में बनाई है, अक्सर आधुनिक विज्ञान को हीरो दिखाने के लिए।
अच्छा, और
दूसरा, मध्ययुगीन सोच पिछड़ी हुई नहीं थी बल्कि अपने आप में एक जटिल और विकसित बौद्धिक परंपरा थी। ये हमें सिखाता है कि हर जमाने की अपनी समझ और उपलब्धियां होती हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उन्हें बस अंधकार युग कहकर खारिज नहीं करना चाहिए।
सही का?
तीसरा,
तीसरा,
विज्ञान और धर्म को अलग करना आज का नजरिया है जो उस दौर की सोच को समझने में बाधा डालता है। ये हमें याद दिलाता है कि उस समय के विचारक दुनिया को ज्यादा एकीकृत नजरिए से देखते थे, होलिस्टिक कह सकते हैं। और चौथा, वो न्यूटन वाला न्यूटन की कीमियागरी कोई भटकाव या शर्मिंदगी की बात नहीं थी बल्कि उनकी दुनिया को समझने की कोशिश का एक जरूरी हिस्सा थी।
हाँ, ये चुनौती देता है कि हम ऐतिहासिक शख्सियतों को उनकी पूरी जटिलता में देखें, ना कि सिर्फ वो हिस्से चुने जो हमें आज पसंद हैं या हमारी कहानी में फिट होते हैं।
ये बातें सिर्फ इतिहास के छात्रों के लिए नहीं है, है ना? इनसे हम आज की जिंदगी के लिए भी कुछ सीख सकते हैं।
बिल्कुल। पहली सीख तो मेरे हिसाब से यही है कि प्रगति धीरे धीरे और मिलकर होती है, कोलैबोरेशन से होती है।
हाँ, चाहे वो ऑफिस का कोई प्रोजेक्ट हो या समाज में कोई बदलाव लाना हो या कोई नई तकनीक बनानी हो, बड़ी सफलताएं अक्सर लगातार छोटे कदमों और टीम वर्क से मिलती हैं, किसी एक झटके या एक अकेले हीरो से नहीं।
और वो प्रेजेंटिज्म से बचने वाली बात, अगर हम अतीत को बिना जज किए समझने की कोशिश कर सकते हैं तो शायद हम आज भी उन लोगों को बेहतर समझ पाएंगे जिनके विचार या संस्कृति हमसे बहुत अलग हैं।
हाँ, ये एक तरह की बौद्धिक सहानुभूति सिखाता है, दूसरों के नजरिए को समझना,
अलग अलग विषयों को जोड़ने का महत्व भी साफ दिखता है। उस दौर के लोग देखो, गणित, दर्शन, धर्म, प्रयोग, सब एक साथ सोच रहे थे।
और आज भी हम यही कहते हैं ना कि इनोवेशन तब होता है जब अलग अलग फील्ड के आइडियाज मिलते हैं, चाहे पढ़ाई हो या बिजनेस, साइलोज में काम नहीं चलता।
बिल्कुल। और विज्ञान और विश्वास के रिश्ते पर भी एक ज्यादा संतुलित नजरिया मिलता है। ये जो विज्ञान बनाम धर्म वाली बहस चलती रहती है वो कितनी छिछली है ये समझ आता है। असल जिंदगी में चीजें ज्यादा घुली मिली होती हैं।
और आखिर में कहानियों पर सवाल उठाना, क्वेश्चन द नैरेटिव, प्रिंसिपे हमें यही सिखाते हैं कि जो भी सरल शानदार कहानियां हमें सुनाई जाती हैं, चाहे वो इतिहास की हो, राजनीति की या बिजनेस की सफलताओं की, हमें थोड़ा रुककर सोचना चाहिए कि क्या कहानी इतनी ही सीधी है।
हाँ, क्योंकि अक्सर सच्चाई ज्यादा उलझी हुई और ज्यादा दिलचस्प होती है।
तो इस पूरी चर्चा से आपके लिए सबसे बड़ा टेक अवे क्या रहा? क्या चीज सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी आपको?
मेरे लिए तो शायद यही कि ज्ञान का विकास कितना घुमावदार रास्ता लेता है। हम सोचते हैं सीधी रेखा में तरक्की होती है, पर असल में ये बहुत सारे पुराने धागों को बुनकर कभी इधर कभी उधर मुड़कर आगे बढ़ता है। और ये वैज्ञानिक क्रांति वाली कहानी कितनी बाद में गढ़ी गई ये जानना भी काफी काफी रोचक था।
और मेरे लिए निश्चित रूप से वो न्यूटन और बॉयल वाला किस्सा कि कीमियागिरी उनके लिए इतनी जरूरी थी, ये हमारी वो आधुनिक साफ सुथरी वैज्ञानिक छवि को तोड़ता है और उन्हें ज्यादा ज्यादा वास्तविक अपने समय के इंसान के रूप में दिखाता है।
हाँ, ये जानना कि उनके लिए धर्म दर्शन और प्रकृति का अध्ययन सब एक ही बड़ी खोज का हिस्सा थे, ये वाकई आंखें खोलने वाला था।
बिल्कुल, प्रिंसिपे का काम हमें याद दिलाता है कि इतिहास को सतही तौर पर नहीं बल्कि उसकी पूरी जटिलता और बारीकियों के साथ समझना चाहिए। ये न सिर्फ ज्यादा सच है बल्कि ज्यादा दिलचस्प भी है।
तो अगली बार जब कोई वैज्ञानिक क्रांति की बात करें तो शायद हम थोड़ा रुककर सोचेंगे कि कहानी असल में क्या थी।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।